बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद आमद है, चुनांचे इसी हवाले से हम कुरान मजीद का मुताला ये करेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान के पहलू से हमें क्या हिदायत दी हैं, क्या अहकाम दिए हैं और उसकी क्या क्या हिकमतें वाज़ की हैं। फिर इसके अलावा रमज़ानी से मुतल्लिक या कह लें कि रोज़ों से मुतल्लिक बहुत से सवालात लोगों के जहनों में गर्दश करते रहते हैं। जो तहजीब की तब्दीली अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है एक मजमूई माहौल में, उसकी वजह से मज़हब की चीज़ों को देखने में जाविया आज से यूँ समझ लें 100 साल पहले ही से ले लें अगर, बहुत मुख्तलिफ हो गया है। चीज़ों पे लोग गौर करते हैं अमूमन उनकी दुनियावी इफादियत को मद्देनज़र रखते हुए। तो जब इस पहलू से देखते हैं तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं, बल्कि यूँ कहना दुरुस्त होगा कि मज़हब की जो बुनियादी हिकमतें हैं, बुनियादी बातें हैं, उनसे हटकर सोचने का अमल एक मज़हब के अंदर शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में फिर जाहिर है कि जो सवालात हैं वो हमेशा तिश्ना ही रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो पाता कि कोई इंसान सवाल करने वाला जो है वो जब सही जाविये से खड़ा होकर सवाल नहीं करता तो अपने सवाल का जवाब पाले और वो एक मुसलसल एतराज़ की कैफियत में रहता है। लेकिन हम इंशाल्लाह कुरान मजीद की रहनुमाई में ये देखेंगे कि सवाल क्या है और उसका सही जवाब क्या है, उसका सही तजिया क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जो इस हवाले से किए जाते हैं मैं उनको आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि एक इब्तदाही में ये चीज़ सामने आ जाए कि जो आयात के मुताले के बाद जिन सवालात को हम देखेंगे वो क्या हैं। यहाँ मैंने कुछ सवालात नोट किए हैं जो मन गर्दश करते रहते हैं लोगों के जहनों में और फिर वो पूछते भी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर तिश्ना यानी कि तिश्ना ही रहता है उनका सवाल, अपना जवाब नहीं पाता। एक सवाल ये है कि रोज़े के अमल से क्या मुराद है, यानी रोज़ा किस नौइयत का अमल है, क्यों किया जाए, क्या चीज़ है ये क्यों, मतलब ऐसे भूखा रहना पड़ता है तो ये क्या इबादत हुई, ये क्या अमल हुआ। इसी तरह एक और सवाल है कि रोज़ा जो है क्या मुसलमानों ही को हुक्म दिया गया है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी ये कहा गया था, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी कहा गया था, इसकी क्या तारीख है। तो ये सवाल फिर ये है कि रोज़े का मकसद है क्या, रोज़े से हो क्या जाना है, अगर हम रोज़ा रख ही लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह ये है कि अगर इंसान बीमार हो उसके लिए रोज़ा रखना मुमकिन ही ना हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो क्या वो ऐसा नहीं कि रोज़ा उसे माफ़ होना चाहिए। तो इसी तरह फिर और सवालात भी हैं कि चलें रोज़ा अगर रखना ही था तो इंसान जब आसानी महसूस करता रख लेता, ये क्यों कहा गया है कि रमज़ान का महीना रोज़ों के लिए ख़ास है, यानी इस एक ख़ास महीने को, कभी ये रमज़ान का महीना गर्मियों में आता है, कभी सर्दियों में आता है, कभी रोज़ा रखना आसान है, कभी मुश्किल होता है। फिर ये बात भी है कि रोज़े बाज़ मुल्कों में बहुत लंबे होते हैं, यानी जो ख़ते सवा से दूर हैं शिमाली तरफ में या जनूबी तरफ में, ख़ते सवा के शिमाल व जनूब में जो दूर के इलाकों में हैं वहाँ रोज़े बहुत लंबे होते हैं और बाद अवकात बहुत छोटे होते हैं, तो ये क्या मसले हैं। इसी तरह फिर ये सवाल है कि कुरान मजीद में इस तरह अक्सर खुद अल्लाह ताला ये बयान देते हैं कि अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, तुम पर तंगी और सख्ती नहीं चाहता, तो अगर आसानी चाहता है तो रोज़ों से हमें वो छुट्टी दे दे, भूखा रहना पड़ता है, मुश्किल पड़ती है तो रोज़े ना ही रखने पड़े, तो क्या ये बेहतर नहीं है, आसानी तो इसको कहते हैं, तो ये क्या चीज़ है जो खुदा कहते। इसी तरह कुछ सवालात और भी हैं, तो ये सारे सवालात जो हैं इंशाल्लाह हम इनको एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहले मैं जो आयात हैं रोज़े से मुतल्लिक, यानी सूरह बकरा की 183 से 185 तक तीन आयतें हैं ये कि जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़े से मुतल्लिक अहकाम बयान फरमाए हैं और रोज़े ही से मुतल्लिक जो हिदायत, जो गाइडेंस हमें देना चाहिए वो गाइडेंस दी है इसमें। तो इसकी हम इब्तदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی کہ جو پہلی امتیں تھیں جس طرح ان پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں. ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضن او الی سفر فعدت من ایام اخر، تو اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا وہ سفر میں ہو تو وہ پھر گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں، یعنی کہ جب وہ سفر سے واپس آ چکا ہوگا یا پھر جب اس کا مرض ٹھیک ہو چکا ہوگا، صحت کی حالت میں ہوگا، تو اس وقت وہ گنتی روزوں کی، جتنے روزے چھوٹے تھے وہ روزے مکمل کریں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ فدیہ دے سکیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا صبح و شام کا کھانا بطور فدیہ دیں. یعنی کس صورت میں؟ جب کہ وہ روزہ چھوٹا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہی رکھنا پڑے ہمیں، تو کیا کوئی گنجائش ہے؟ تو بتائے گا ہاں گنجائش ہے، تم ایک مسکین کا کھانا صبح و شام کا جو ہے یا کسی غریب آدمی کو کھلا دو تو ٹھیک ہے، تم روزہ نہ رکھو. دس روزے چھوٹے تھے، دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، یا ایک ہی مسکین کو دس دن کھانا کھلا دیا، یعنی صبح و شام اس کے جو کھانے کا خرچ ہے وہ اپنے اس کو دے دیا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خوشی سے کہے نہیں میں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو نہیں دو کو تین کو چار کو کھلاؤں گا، تو اچھی بات ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. یعنی کہ جو فرض تھا وہ تو ایک مسکین ہی کا صبح و شام کا کھانا تھا، لیکن اگر وہ یعنی کہ زیادہ کو کھلا دیتا ہے تو اس نے اپنے لیے نیکی کمائی، اضافہ کیا اپنی نیکیوں میں. وَأَن تَصُومُوا خیر الکم ان کنتم تعلمون، اور بتا دیا کہ اگر تم روزہ ہی رکھو نا، روزہ چھوٹا ہے تو روزہ ہی رکھو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی خدا کے نزدیک تو یہی بات بہتر ہے کہ تم روزہ چھوٹا تو روزہ رکھو، لیکن اگر تم رعایت لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ تم کھلا سکتے ہو. یہاں تک کی جو آیتیں ہیں یہ ابتدا میں نازل ہوئی تھیں، یعنی بات یہ ہے کہ روزے کا حکم دو درجوں میں نازل ہوا، دو سٹیپس میں نازل ہوا. کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، اس میں کہا گیا کہ گنتی کے چند دن ہیں اور ان دنوں میں تم روزہ رکھو، اور اگر کوئی مشکل ہو تو پھر ٹھیک ہے فدیہ دے دینا روزے کی جگہ پر، بہتر ہے روزہ رکھ لو لیکن فدیہ دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہے، قبول ہوگا وہ. اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ میں جو کچھ عرصے کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں روزے ہی سے متعلق، سورہ بقرہ میں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے ایک ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ متصل ہے لیکن نزول کے اعتبار سے متصل نہیں ہے. اور اس کو پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک حکم جو ان آیتوں میں، جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں دیا گیا ہے نا، اس حکم کو اگلی آیتوں میں ختم کر دیا گیا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے موقع پہ حکم کا وہ پہلو جو ابھی سامنے آ جائے گا وہ واپس لے لیا گیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدًى للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہ جو ہدایت ہے نا، اس لفظ کو میں یہاں واضح کر دوں کہ ہدایت ہی اصل چیز ہے. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی بات جو آپ سے متعلق وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے، اس کے نزدیک جو صحیح ہے، جس کے بعد آپ ایک اچھے انسان قرار پاتے ہیں، ایک صحیح انسان قرار پاتے ہیں، ایک صاحب خیر قرار پاتے ہیں، وہ آپ کو سجھا دی تو یہ ہدایت دے دی. یعنی ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا نا، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، تو وہ اسی مہینے میں نازل ہوا تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وبینات من الہدیٰ والفرقان، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں، اور فرقان ہے یہ، فرقان کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یعنی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ انسان پر یا انسان کی عقل پر کہیں یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، انسان نہیں سمجھ پاتا کئی معاملات میں، कई मामलों में वो समझ लेता है कि ये सही है और ये गलत है, ये इंसाफ है और ये बेइंसाफी है, लेकिन कुछ मामलों में वो बिल्कुल नहीं समझ पाता। मैं एक ज़िमन ज़िक्र कर दूं कि जैसे सूद सही है या गलत है, इंसानियत के लिए इसमें फ़ायदा है, जुए में फ़ायदा है या नुकसान है। बज़ाहिर तो फ़ायदा भी नज़र आता है, नुकसान भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये वादे कर दिया कि जो है ना सही बात क्या है, यानी फुरकान बना दिया कुरान मजीद को। तो फरमाया तुम में से जो इस महीने में हो वो इसके रोज़े रखें, फलियसुम हो, फमन शाहिद मिनकुम उश्शहरा फलियसुम हो, तो जो तुम में से इस महीने में मौजूद हो वो रोज़े रखे, फमन काना मरीजन अव्वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे, यानी जो रोज़े छूटे हैं ना वो पूरे करें। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वो तुम पर तंगी नहीं चाहता। वाले तुकमिलुल इद्दता वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला अल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम गिनती पूरी करो, यानी वो जो पहले रियायत दी गई थी कि फ़दिया रख लो, तो वो फ़दिया नहीं रखेंगे, फ़दिया नहीं करेंगे इख्तियार आप फ़दिया देने का मामला, बल्कि आप गिनती पूरी करेंगे और अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे। वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये जो कुरान के ज़रिए से अल्लाह ने आपको हिदायत दी, इस पर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करेंगे, खुदा की अजमत उसकी जलालत उसका ज़िक्र करेंगे। वला अल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो। रोज़े से मुतल्लिक ये आयतें हैं कि जिसमें बुनियादी चीज़ें हमें बताई गई हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।